कितनी इंसानियत है। आज जब हम जहाज में थे तो हम जहाज में कुछ सीट्स खाली थी, तो हमारे साथ भी खाली थी पीछे, तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ की मेरे हस्बैंड यहीं के रेस्ड हैं, इंग्लिश में फ्लुएंट है, तो उनको बहुत अच्छा लगता है जब भी ट्रैवल में, आपको पता है कि लोग फारिग होते हैं ज्यादा, तो बातचीत करना इस्लाम पे ऐसी हल्की, हमेशा बात इसी तरह शुरू करते हैं, व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज द पर्पज ऑफ लाइफ। तो अमूमन हमारे साथ तीसरा पर्सन जो मर्द होता है, तो मैं शुक्र करती हूँ कि अब ये बोलेंगे तो मैं आराम से बैठूंगी, क्योंकि फिर मैं विंडो की तरफ होती हूँ और बीच में ये होके दूसरी तरफ ये है, और कभी कोई औरत आ जाए तो फिर मुझे बोलना पड़ता है। तो इत्तेफाक ये था कि आज मरसल कोई भी नहीं था, फिर अल्लाह का हुक्म इस पर भी था, ऑलमोस्ट 2 आवर्स हमें जहाज में बैठना पड़ा। कोई प्रॉब्लम थी आपकी तरफ, कोई फूकें थी क्या थी? अल्लाह के हुक्म से फ्लाइट तो 1 घंटा 10-20 मिनट की थी, लेकिन हम उससे पहले जहाज में थे, तो मेरे साथ बैठे हुए तो मुझे कहते हैं मैं किससे दावत दूं, मैं किससे बातें करूं। मैंने कहा मुझे दावत दें। खैर किस्सा मुख्य, वो जैसे कहते हैं ना आदत पड़ी हो तो जाती नहीं, तो थोड़ी देर बाद स्ट्रेच के लिए उठे तो हमारे बिल्कुल पीछे कोई एक शख्स था, मैंने नहीं देखा, लेकिन बाद में जब ये उधर बैठे तो मुझे इनकी आवाज आई, उससे हाउ आर यू डूइंग, वो बड़ा खुश अखलाक था, जो मैं इस वक्त आपसे अपना दर्द शेयर करने लगी हूँ। उसके बाद ये पीछे बैठ गए, पूरा वक्त ये उनसे बातें, इतना स्माइली और इतना वो शख्स, जैसे कुछ लोग होते हैं ना, वो अक्सर तो लोग पसंद करते हैं, लेकिन वो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी इंटरेस्ट ले रहा था, और ये उसको बता रहे ऐसे ही पर्पज ऑफ लाइफ, लुक एट द हेवन, लुक एट द स्काई, हु मेक दिस दिस, और साथ हल्की फुल्की बातें, और वो एक्सीलेंट और ऐसे, और वो इतना, तो मैं आगे एक किस्म की रो रही थी। मैंने कहा शायद आज का ये जहाज का ये सफर और ये हमारा थोड़ी जहाज में थोड़ी देर बैठना, अल्लाह इस बंदे को आग से बचा ले, इतना स्माइली है, इतना नहीं, बाद में शुक्रिया बोल के गया, आई लाइक योर टॉकिंग, थैंक यू, फिर शुक्रिया अदा कर रहा है और वो देख रहा है, और कैसे यानी उसके कमेंट्स थे। तो मैंने सोचा कि कितने ऐसे लोग हैं जो आग भी तरस रहे हैं, लेकिन हम अपने हाल में रहते हैं, हमारे दिल में तड़प नहीं है, सच्ची बात है हमारे दिल में रहम नहीं है। हम किसी को भूखा देखते हैं, हम फौरन जेब से पैसे निकाल के कहते हैं जाओ खाना ले लो, हम किसी को सर्दी में ठंड में देखते हैं, हम कहते हैं जाओ मोटे कपड़े ले लो, लेकिन हमें तरस नहीं आता लोगों को कुफर के ऊपर देखकर, जहालत में देखकर। आपकी बात सच है कि पहले हम मुसलमानों को तो बता लें, नॉन मुस्लिम तक वो पहुंचेगा जिसका अपना दिल तड़प चुका होगा, हम तो आज अपनों से बात नहीं करते। तो रहमान रहीम, उस रहम वाले के बंदे होने का तकाजा क्या कि इबादुर रहमान बनो। मेरी और आपकी जिंदगी की ये तस्वीर होनी चाहिए कि हमने अल्लाह के बंदों को बचाना है, और अगर नहीं है ना तो अगली सिफत मालिक यौमिद्दीन, बदले के दिन का मालिक। इमेजिन कीजिए एक बड़ा सा दरबार लगा है और मैं वहां कटहरे में खड़ी हूं, और सारी जिंदगी की नेमतें जो मेरे रब ने मुझे दी वो उसका हिसाब मांग रहा है। देखिए जब किसी को मालिक कहते हैं तो हक देते हैं ना कि अब हिसाब भी ले ले। जब हम कहते हैं ना मालिक यौमिद्दीन, असल में हम अल्लाह को कहते हैं कि अल्लाह अब तू मेरे से हिसाब ले। क्या हिसाब दे सकते हैं? आज जिंदगी में जो कुछ उसने हमें दिया आज उसका हिसाब खुद को दे ले। जो खा लिया अच्छे काम कर लिए उन लुकमों का हिसाब नहीं है, जो पहन लिया और अच्छे काम कर लिए उस दौरान हिसाब नहीं है। असल हिसाब कब होगा और किस चीज का होगा? खाते भी अच्छा है नाफरमानियां उतनी, जिस दिन ज्यादा अच्छा पहनते हैं उस दिन ज्यादा नाफरमानियां करते हैं। और मैं तो सबसे ज्यादा खुद को मुजरिम कहती हूं जो हम वेस्ट में रहते हैं। यकीन करें हम बिगड़ गए, माजरत के साथ मैं आपकी गेस्ट हूं, लेकिन मुझे आपसे मोहब्बत है, इसलिए कि मुझे ऐसे महसूस होता है कि हम वेस्ट में रहने वाले नेमतों में इतने पल गए, एक मिनट हम पंखे के बगैर नहीं रहते, एक 19-20 की कुर्सी हमारी टेढ़ी हो जाए हमारे मिजाज बिगड़ने लगते हैं, हम इतने सेल्फ सेंटर्ड हो गए कि हमें ऐसे लगता है कि जो हो दुनिया में बस हमारी मर्जी से हो, और कौन। कई जगह मजबूरियों में लोग होते हैं, उनको झुकना ही पड़ता है, मजबूरी में फंसे हुए उनको फंसना है, बिजली नहीं है क्या करें, हमारी तो बिजली भी नहीं जाती। मैं सोच रही थी जब ये पानी का सोच रही थी तो मैंने कहा अल्लाह ना करे ऐसा ना हो कि फिर इन मुल्कों में भी अब ये सब चेकिंग हो जाए और सारा कुछ बिजली का भी बिल आए और पानी का भी और कनेक्शन हो, और पाकिस्तान में कराची में आपने देखा है लोग टैंकरों के हिसाब से पानी खरीदते हैं और लाते हैं, फिर जो मेहमान आता है उसके लिए भी वो कहते हैं कि जरा कम इस्तेमाल कीजिए। जब अल्लाह हमें इस दुनिया में नेमते देता है तो मालिक यौमिद्दीन, आप इसको अपने ऊपर लें। जब आप कहते हैं अल्लाह अकबर, क्याम की हालत में हम पढ़ते हैं ना सूरह फातिहा, मैं जब हाथ सीने पर बांध के खड़ी करूँ अपने आप को तो मुझे ऐसे लगता है कि मुजरिम कटहरे में खड़ा है, और एक बड़ी अदालत है, और वो मालिक यौमिद्दीन पूछ रहा है बता क्या किया जिंदगी में। तीन सवाल कब्र के जो मालिक यौमिद्दीन ने जरूर पूछने हैं, और पांच सवाल क़यामत के दिन के। कब्र के तीन सवाल, मन रब्बू का, रब कौन था, मर रसूलू का, तुम्हारा रसूल कौन था, और मा दीनू का, दीन क्या है। हम कहेंगे ये तो फर फर बोलेंगे, किसको नहीं पता अल्लाह रसूल और आखरत और इस्लाम। हदीस में आता है कि जिस शख्स ने दुनिया में अल्लाह को रब मानने का हक अदा ना किया, कब्र में उसकी जुबान से लफ्ज रब नहीं निकलेगा। क्या कहेगा? लादरी लादरी, आई डोंट नो आई डोंट नो। एक रिवायत में आता है कि वहां कहेगा काश मैं दुनिया में कुछ पढ़ता लिखता तो आज तुम्हें इसका जवाब देता। और एक रिवायत में आता है कि इंसान कहेगा जो लोग कहते थे मैं तो वो कह देता था, लेकिन लफ्ज रब उसकी जुबान पे नहीं आएगा। और रसूल का लफ्ज कब आएगा जुबान पे? जब रसूल के मुताबिक जिंदगी बसर की होगी। अल्लाह के रसूल एक उस्वे हसना होते हैं। क्या अल्लाह के नबी सल्लम सिर्फ हमें नमाज सिखाने आए थे? वो तो एक छोटे से बुकलेट में आती, पूरे कुरान में से आप नमाज के आयतें जमा करें ना तो 2-2.5 सफों का एक बुकलेट बनेगा, दैट्स इट। सबसे लंबी आयत तो कुरान में जो है वो आयत दहन है, कर्ज के मसाइल पे, विरासत के मसाइल देख लीजिए, वसीयत के अहकाम देख लीजिए, तलाक और निकाह के अहकाम देखिए। आज हमारी जिंदगी में रसूल की इताअत कितनी है? और दुख पता क्या हो रहा है कि वक्त के साथ साथ जितना हम अपने आप को मुआशरे से अपडेटेड करते हैं उसमें सबसे बड़ी चीज जो निकलती जा रही है वो रसूल की इताअत निकलती जा रही है। हम कहते हैं रसूल की सुन्नतें क्या हैं? फर्जों के बाद सुन्नतें, फजर की 2 सुन्नतें, असर की और जोहर की। हम सुन्नत फिर उस पर पहुंच जाएंगे, सुन्नतें मौकदा है गैर मौकदा है, यानी हमने सुन्नतों को नमाज से जोड़ दिया। हाँ मिसवाक की सुन्नतें भी हैं, अल्लाह के नबी मिसवाक पकड़ते थे और ये वो, यानी हमने अमली सुन्नतों को सिर्फ इबादात से जोड़ दिया, लेकिन हमें ये नहीं पता कि ये भी सुन्नत ही के लोगों के लिए तड़पो, ये भी सुन्नत ही के दुश्मन तुम्हारे सामने है तो मुकाबला कर सकते हो, लेकिन जाके कह दो ला तसरीब अलैकुम अल यौम, आज के दिन तुम्हारी कोई पकड़ नहीं, जाओ माफ कर दो। मक्का और मदीना की गलियों में तड़पना भी सुन्नत थी, ताइफ तक जाना, पैदल सफर करना, खून पांव में जम गया, जूते चिपक गए, ये भी सुन्नत थी। आज हम मुसलमानों की जिंदगी में खूफ अनफुसकुम व अहलीकुम नारा तो दूर की बात है, हम कहां इन सुन्नतों पे चलते हैं कि इस्लाम को फैलाना भी तो एक सुन्नत थी। तो ये तो बड़ा तल्ख मौजू है, आज हम मुसलमानों को इस चीज को अमल में लाना पड़ेगा। जिस तेजी से हमारा लाइफस्टाइल चेंज होता जा रहा है ना, हमारे बच्चे अगली 1-2 जनरेशन के बाद शायद ये भूल ही जाएंगे कि नबी के सुन्नत पहनने ओढ़ने खाने पीने के तरीके क्या थे। और सहाबे कराम अल्लाह के नबी से इतनी मोहब्बत फरमाते थे, खाते नहीं थे कुछ, कहते थे पता चल जाए कि अल्लाह के नबी खाते कैसे थे इसको। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर एक दफा एक सफर पे थे, उनके गुलाम नाफे उनके साथ थे, तो दूर से बांसुरी की आवाज आई। बांसुरी वो क्या उसको बोलते हैं इंग्लिश में? फ्लूट। तो आपने अपने कानों में उंगली दी और कहा कि जब आवाज आनी खत्म हो जाएगी ना तो मुझे बताना। जब कुछ और आगे गए, मुलाजिम ने बता दिया कि अब नहीं आ रही, तो कानों से उंगलियां निकाली और कहा कि वल्लाही एक दफा मैं नबी सल्लम के साथ एक सफर से गुजरा था और वहां बांसुरी की आवाज आई थी, तो आपने उस वक्त बिल्कुल ऐसे ही किया था, तो मैंने आज आपकी मोहब्बत में ऐसे किया। आज हम कहते हो क्रेजी, क्या फर्क पड़ता है। और मैंने खुद अपने कानों से ये बात सुनी कि एक इफ्तारी में किसी बड़े 5-स्टार होटल, मुस्लिम मुल्क की बात है, कोई यहां की बातें नहीं है, इफ्तारी का प्रोग्राम किसी बड़े होटल में था और मगरिब से कुछ देर पहले का वक्त ही होता है ऑफकोर्स, और म्यूजिक चल रहा था, तो जाके उन्होंने कहा कि यहाँ इफ्तारी के लिए लोग आए हैं, म्यूजिक बंद कर दो। तो उन्होंने कहा अच्छा म्यूजिक तो नहीं बंद कर सकते, ये तो होटल के असूल के खिलाफ है, क्योंकि यहाँ माशाल्लाह गोरे और काले सारे ही रहते हैं, चलो ऐसा करते हैं कि इसको बंद करके लाइव बांसुरी भजवा देते हैं जी। तब मुझे ये हदीस याद आई कि एक सहाबी का अमल क्या था। देखिए हमारा क्या हाल है, मुझे अभी रमजान में किसी ने पूछा ये बताएं कि इफ्तारियों में ये जो मिक्स डिनर होते हैं तो क्या फिर हम उसमें जाएं कि ना जाएं। तब मुझे पता चला कि अभी भी ये जो हालत मौजूद है कि रमजान की तरावी सवाब की नियत एक मिनट पहले आप रोजा खोल लेना तो लोग आपके ऊपर फतवा दायर कर देंगे, और आप जरा सा किबला देखते हुए इधर से इधर कर दें तो छोड़ देंगे, लेकिन उसमें सुन्नतें टूटती दिखती हैं। क्या हो गया मुसलमान आज तुझे, ऐसे लगता है कि हमारे अंदर से सोचने समझने की सलाहियत ही चली गई। सिर्फ इबादत बराए इबादत, नमाज बराए नमाज, रोजा बराए रोजा, हज बराए हज। अगर इस तरह की जाहरी नेकियों से दीन फैल जाता तो अल्लाह के नबी को बदर से लेकर तबूक तक इतना खून जलाने की क्या जरूरत थी। इसलिए मालिक यौमिद्दीन, बदले के दिन का मालिक, इसको जहन में रख के जिंदगी बसर करनी है। और जिस इंसान ने जिंदगी से सोच से गुजार ली ना कि मैंने रब को जवाब देना, याद रखे वो कहते हैं ना, जो डर गया वो तर गया। 29वें बारे में आता है, अल्लाह ताला जब किसी को फम मनूत या किताब हु भी यमीन ही फयकूल हाउ मुकरब किताब या, जिसको अल्लाह दाएं हाथ में नामे अमाल देगा वो लोगों को खुशी खुशी दिखाएगा, लोगों मेरा नामे अमाल देखो। लोग पूछेंगे भाई क्या हुआ, आप क्या करते थे, क्या नेकियां करते, एक जुमला, इन्नी जनन्तु अन्नी मुलाकिन हिसाबिया, मैंने सिर्फ इस शऊर के साथ जिंदगी बसर की थी कि मुझे अपने हिसाब से मुलाकात करनी है। ये है मालिक यौमिद्दीन। सच बताएं क्या आज हम इस सोच को अपनी जिंदगी में पाते, आती है सोच लेकिन ठहरती नहीं है। वरना मुसलमान रमजान के बाद इतनी जल्दी बदल ना जाए कि ईद के दिन भी पहचानना मुमकिन ना रहे, और कब्र के बाद जो 5 हिसाब मालिक यौमिद्दीन ने कयामत के दिन लेने, आप में से कुछ को तो शायद मेरे से सुन के जुबानी याद हो चुके होंगे। इतनी दफा मैंने यह हदीस दरसों में कोट की, लेकिन जब बयान करती हूँ बिल्कुल नहीं लगती है। आपका भी हक है। 5 सवाल कौन से होंगे कयामत के दिन, सिर्फ मैं और आप अपने ऊपर लेकर सोचें। पर्चा आउट है, सिर्फ मुझे और आपको उसकी तैयारी करनी है। कौन से सवाल है, हदीस में आता है, सही दर्जे की हदीस है। फरमाया कि ला तजूल कदमन इब्ने आदम इंद रब्बिही हत्ता युसअलु अन्हु खमसा, क़यामत के दिन आदम का बेटा अल्लाह के सामने से कदम नहीं हिला सकेगा। जैसे कभी माँ को बच्चे पे बड़ा गुस्सा आता है ना, कहती है हिलना नहीं, यहाँ से सीधे खड़े हो जाओ, मेरी तरफ देखो, खबरदार यहाँ से मूव किए तो। इतना अल्लाह गुस्से में होगा कि कदम नहीं हिलाने देगा जब तक हत्ता युसअलु अन्हु खमसा, 5 सवालों के जवाब ना दे। और पहला सवाल, अन उम्री ही फी मा अफना हो, उम्र कहाँ फना की। क्या मैं और आप अगली नमाज की सूरत फातिहा में मालिकी यौमिद्दीन कहते हुए इसको याद रखेंगे। और ये सवाल नेकों से भी होना, बदों से भी होना, नबियों से भी होना और फाजिरों से भी होना, बताओ उम्र कहाँ गुजारी, आज हमारी उम्रें कहाँ गुजर रही हैं, आज हमारी जिंदगी का मकसद क्या है। मुझे सबसे मुश्किल लगता है उस वक्त लोगों के सवाल का जवाब देना जब लोग कहते हैं कि आप कहाँ रहती हैं, आज भी पूछा है, हर दिन पूछते हैं लोग, अच्छा आप कहाँ हैं, कहाँ से आई हैं, किधर जाएंगी बता, अच्छा आपका अपना घर किधर है, अच्छा आपका परमानेंट घर किधर है, परमानेंट आगे बनेगा, परमानेंट बना के बैठ गए तो कैसे मूव हो सकते हैं, क्योंकि फिर कदम पकड़ लिए जाते हैं। अगर अल्लाह ने हालात ऐसे बना दिए कि हम अगर 4 लोगों की मदद कर सकते हैं इधर से उधर जाके, तो हमें क्या मिलता है। मुझे किसी ने कहा जब आप इधर उधर दरसों में जाती हैं कितने को लोग आते हैं, मैंने कहा मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है, एक भी ना आए, ये मुझे पता कि मैं चली गई, मेरा अजर लिख लिया अल्लाह ने। और किसी एक को पता लग जाए, किसी एक की जिंदगी बदल जाए, आपको मुझे क्या पता, हमको गिनने आते हैं, हम कोई लोगों को बालिशों से नापेंगे, और कोई एक भी मान ना ले तो लाए तो क्या अजर जाया हो गया, फिर तो हजरत नूह का अजर जाया हो गया। इतना फिक्र है कि अपनी उम्र जो गुजर रही है बर्फ की तरह, इसको मेल्ट करने से होने से बचाना, हम रोक तो नहीं सकते। आप और मैं देखिए आज इस वक्त क्या तारीख है, 9 अगस्त 2015। कल इस वक्त तक हम अपनी मौत से 24 घंटे दूर थे आज की निस्बत। घड़ी का हर घंटा हमें हमारी मौत के करीब कर रहा है। अनुम्री ही फी माफ ना हो, कहां फना हो रही उम्र, क्या ये कोई जिंदगी है हमारी। सुबह होती है, उठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, फिर घर साफ करते हैं, फिर खाने बनते हैं, फिर सफाइयां होती है, फिर बच्चों को लाते हैं, खाते हैं, पिलाते हैं, फिर शाम होती है, फिर उनकी फिक्र करें, और कुछ स्कूल का पढ़ लिया, कुछ सपारा पढ़ा दिया, फिर अगले दिन वो ही एक रोटेशन पे चल रही है जिंदगी। जिंदगी पे बंदगी शर्मिंदगी। तो आज मैंने अपने आप से ये सवाल करना है सोने से पहले कि मेरी जिंदगी कहां गुजर रही है, खुद से तो पूछे मेरी जिंदगी से क्या फैल रहा है। अगर मैं आज दुनिया से चली जाऊं किसको फर्क पड़ेगा? कितने लोग रोएंगे मेरे मरने पे, कितनों को सदमा होगा मेरे मरने का? जितने को दुनिया में फायदा दे रहे हैं ना, कम से कम उतने लोग तो हमारी वजह से मुतासिर होंगे ना। दो बच्चों को सारा दिन पालते रहते हैं, उन्हीं के नखरे देखते रहते हैं। मैं कहती हूँ माजरत के साथ छोटे बच्चों वाली माएं, अल्लाह ताला सबके बच्चों को सलामत रखे, लेकिन जिस तरह आज बच्चों को अमूमन मुसलमान पाल रहे हैं, ऐसे पहले माएं नहीं पालती थी। आप में से दो चार से बात में पूछ लूं, दस दस बच्चे होते थे मौके, ऐसे ही पल जाते थे, काम भी करती रहती थी, बच्चे भी पल जाते थे। आज तो वो जैसे पौधे को हर वक्त पानी देते रहते हैं ना, तो वही गल जाता है। इतने नखरे, इतने लाड़, फिर बच्चे आपका मुस्तकबिल सेट करते हैं, किधर जाना है, किधर नहीं जाना, क्या करना है। पलने दीजिए, अल्लाह पाल देगा, लेकिन आप अपने जिंदगी के मकसद को ना भूलें। फिर दूसरा सवाल होगा, इन शबाब ही फी मा बिला हो, जवानी कहां पुरानी की। आज कितने लोग हैं जो कहते हैं अच्छा जब दीन का काम करने लगे, बूढ़े ही होंगे ये जवान भी दीन का काम करते हैं। अच्छा हमने तो सोचा जब फलां बड़ा ही बूढ़ा सा होगा, ये जवान कैसे निकला? क्यों, अल्लाह का दीन बूढ़ों का है? आप और मैं अपने लिए क्या पसंद करते हैं? शौहर जवान, बेटा जवान, भाई जवान, खुद क्या चाहते हैं हम सब? जवानी। आज एक मार्केट में ऐसी क्रीम आ जाए ना कि जिस पे दावा हो कि इसको लगाने से आप कभी बूढ़े नहीं होते, चाहे पिक की चर्बी डली हो, चाहे वो $100 के $1000 की हो, हम बोरो करके ले लेंगे, हमने बूढ़े नहीं होना। और आपको था कि ये थी वो ख्वाहिश जिसके रास्ते आदम और हवा को बहकाया था इबलीस ने, कि तुम्हें पता है ऐसी दवा दे दूं कि इसके बाद तुम बूढ़े नहीं होगे और तुम जिंदा रहोगे। तो जवानी रब को दे दे, आपका रब आपसे आपकी जवानी मांगता है। क्यों मांगता है? ताकि आपको हमेशा के लिए जवान कर दे। हदीस में आता है कि जन्नत में जाने के बाद कोई बूढ़ा नहीं होगा। अल्लाह ताला ने जन्नत में जाने से पहले ही सबको जवान कर देना। एक बुढ़िया आई अल्लाह के नबी के पास, कहा अल्लाह के नबी मैं जन्नत में जाऊंगी? कहा नहीं, बूढ़े नहीं जाएंगे, बूढ़े नहीं होंगे। रोने लग गई। कहा अल्लाह की बंदी तू जवान होके जाएगी, कितनी बड़ी बात है। आज हम अपनी और अपने बच्चों की जवानियों को भी देखें। आज हमारे जवानों की तो एक नई दुनिया है, अपनी दुनिया है। हम चार छह दस लोग मिल जाए, बस हम कहते हैं अब ये बच्चों के काम थे, वो मसरूफ पड़े हैं, वो पढ़ रहे हैं ना, वो जॉब्स करते हैं ना। अच्छा वीकडेज में वो पढ़ते हैं, अच्छा वीकेंड में आ जाए वो जॉब करते हैं, शाम को वो जिम जाते हैं, रात को वो आ जाए फिर इसी क्लास में आ जाए, कहते नहीं उस वक्त उनके गेट टुगेदर्स होते हैं, पार्टी। एक दो स्ट्रीम्स चल रही हैं, एक तरफ जिंदगी के अंदर माँ बाप की और एक तरफ बच्चों की। इल्ला माशाल्लाह जिन्होंने अपने हाथ में रखा है, लेकिन इस जवानी को अल्लाह के लिए लगाए। दर जवानी तौबा करदन शेवा पैगंबरी, जवानी में तौबा करना नबियों का शेवा। हर नबी को जवानी में नबुवत मिली, उन्होंने उससे फायदा उठाया।